بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، يا والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، अर्थात उन पर कार्यबद्ध रहते तो निसंदेह वे अपने ऊपर और पैरों के नीचे से ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त करते। उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा। निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, सितंबर की दूसरी, मुहर्रम की 24 और शहरीवर माह की 11 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले विश्व समाचार पेश किए जाएंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनैतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे। उसके उपरांत दो साप्ताहिक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, सफल महिलाएं और आज की बात। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir, और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि इस्लामी प्रतिरोध ने क्रांतिकारी युवाओं को ज़ायनी शासन के लिए दुस्वप्न में बदल दिया है। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हेबतुल्ला अखुंदजादे को अफगान सरकार के प्रमुख के रूप में चुन लिया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि विश्व अफगानिस्तान को इन हालात में अकेला न छोड़े। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव के बधाई संदेश के जवाब में कहा है कि इस्लामी प्रतिरोध की शक्ति ने क्रांतिकारी युवाओं को ज़ायोनी शासन के लिए डरावने सपने में बदल दिया है। अलमनार चैनल ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने हिजबुल्लाह प्रमुख की ओर से बधाई संदेश का शुक्रिया अदा किया और उनको संबोधित करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह एक पवित्र पेड़ की भांति है जिस पर आपकी ओर से मोमिन और क्रांतिकारी युवाओं के मार्गदर्शन तथा प्रतिरोध के शहीदों के पाक खून की बदौलत फल आए हैं।
भारत के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष में टेलीफोनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल देते हुए उन्हें नई दिल्ली का दौरा करने का निमंत्रण दिया है। फास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लायन से टेलीफोनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंध और आपसी रुचि के विषय पर विचार विमर्श किया। इस टेलीफोनी वार्ता में भारतीय विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय का प्रमुख बनने पर हुसैन अमीर अब्दुल्लायन को बधाई देते हुए दोनों देशों के संबंधों को विस्तृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी तरह दोनों नेताओं ने ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और जनसंपर्क सहयोग में विस्तार की ओर इशारा करते हुए इस बारे में वार्ता के लिए ईरान के विदेश मंत्री को नई दिल्ली का दौरा करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने इसी तरह अफगानिस्तान के बारे में दोनों पक्षों के बीच विचार विमर्श जारी रहने पर बल दिया। ईरान के विदेश मंत्री श्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने नई दिल्ली का न्योता देने पर अपने भारतीय समकक्ष का शुक्रिया अदा किया और आर्थिक सहित समस्त क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों में विस्तार का स्वागत किया।
अफगान सरकार के प्रमुख के रूप में हेबतुल्लाह आखुंदजादे का चयन हो गया है। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य बिलाल करीमी का कहना है कि हेबतुल्लाह आखुंदजादे को सरकार का मुखिया चुन लिया गया है। तालिबान नेता हेबतुल्लाह आखुंदजादे सरकार के सुप्रीम होंगे। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके आदेशों के तहत ही काम किया करेंगे। तालिबान और अफगान नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि तालिबान के राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ अधिकारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर संभावित रूप से सरकार के प्रवक्ता होंगे। अफगानिस्तान की तुलू न्यूज के अनुसार तालिबान के कल्चरल कमिश्नर के सदस्य अब्दुल्ला ने भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नई सरकार पर विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कैबिनेट को लेकर जरूरी फैसले भी ले लिए गए हैं। हम जिस इस्लामी सरकार का ऐलान करेंगे वो लोगों के लिए उदाहरण होगी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने विश्व समुदाय से कहा है कि वो अफगानिस्तान को इस समय अकेला न छोड़े। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में अपनी डच समकक्षी के साथ भेंट में कहा कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान को अकेला छोड़ने के बहुत ही खतरनाक परिणाम निकलेंगे जिनसे कोई भी नहीं बच पाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के निकलने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं कि वहां पर बनने वाली सरकार कितनी व्यापक होगी। विश्व समुदाय पहले से ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि वो अफगानिस्तान के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को ही मानता देगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि विश्व को अफगानिस्तान की मानवीय और आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। इस भेंटवार्ता में नीदरलैंड की विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में कहा कि मैं यहां पर इस संदेश को मजबूत करने के लिए मौजूद हूं कि हम अफगानिस्तान पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। उनका कहना था कि नीदरलैंड को अफगानिस्तान की मानवीय आवश्यकताओं का पता है। उन्होंने बताया कि हम अफगानिस्तान के लिए प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ यूरो का प्रबंधन करते आए हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नीदरलैंड की विदेश मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है जिसमें न केवल अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा बल्कि वहां की मानवीय आवश्यकताओं पर भी गौर किया जाएगा।
भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय मीडिया के अनुसार अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन दाइश में शामिल 25 भारतीयों की एंट्री को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। NIA की ओर से दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की गई जांच के बाद 25 लोगों के अफगानिस्तान में आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आई है। NIA का कहना है कि उसे इन लोगों के मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन ये अफगानिस्तान गए थे और फिर वहां के नंगरहार प्रांत में जाकर वे दाइश से जुड़ गए थे। इस रिपोर्ट के बाद से ही एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत के 43 प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेल रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों को आशंका है कि ये लोग किसी तीसरे देश के जरिए भारत में एंट्री की कोशिश कर सकते हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद एक पूर्व वरिष्ठ अमरीकी राजनयिक ने कहा है कि चीन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। انہوں نے کہا ہے کہ وہ بگرام وایو سینا کے اڈے پر قبضہ کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے جس پر لگ بھگ دو دشکوں سے امریکہ کا نینترن تھا۔ سنیوکت راشٹر سنگ میں امریکہ کی پورو دوت نکی ہیلی نے بدھوار کو فاکس نیوز کو بتایا کہ یہ سمے ہے کہ راشٹرپتی جو بائیڈن کا پرشاسن بھارت، جاپان اور آسٹریلیا جیسے اپنے پرمکھ متروں اور سہیوگیوں تک پہنچنے سہیوگیوں تک پہنچے اور انہیں آشوست کریں کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ نکی ہیلی نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے ترنت ہمارے سہیوگیوں کے ساتھ جڑنا شروع کر دینا چاہیے، چاہے وہ تائیوان ہو، یوکرین ہو، اسرائیل ہو، بھارت ہو، آسٹریلیا ہو یا پھر جاپان ہو، انہیں آشوست کریں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ دوسرا، ہمیں یہ سنشچت کرنے کی آوشکتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں آتنکواد ویرودھی پریاس کر رہے ہیں۔ جہادیوں کی اس نیتک جیت کے ساتھ آپ چاروں طرف بڑے پیمانے پر بھرتی ابھیان دیکھنے جا رہے ہیں۔
سیریا کے ایک جانکار سینی سوتر نے بتایا ہے کہ امریکہ نے سیریا میں موجود اپنی 3 سینی چھاونیوں کو خالی کر دیا ہے۔ بدھوار کو ایک جانکار سینی سوتر نے العالم چینل کو بتایا کہ امریکی سینا نے دیر زور پرانت کی ایک اور ہسکا پرانت کی 2 چھاونیوں کو خالی کر دیا۔ العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے انوسار امریکی سینا نے دیر زور پرانت میں العمر آئل فیلڈ کے پاس 1، دوسری ہسکا پرانت کے تل بیدر میں، تیسری ہسکا پرانت کے قصرک میں موجود چھاونی کو خالی کر دیا۔ دوسری اور وبھن پرکار کے آدھونک ہتھیاروں اور سینی اپکرنوں سے لیس امریکی سینکوں کا ایک اور کارواں عراق سے سیریا میں گھسا ہے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار سینی ٹرکوں، ٹینکروں اور توپوں سہیت وبھن پرکار کے ہتھیاروں سے لیس امریکی آتنکوادی سینکوں کا ایک کارواں بدھوار کو عراق کے الولید بارڈر سے دکشنی سیریا کے الحسکا شیتر میں داخل ہوا۔
فلسطین کے جہاد اسلامی سنگٹن کا کہنا ہے کہ پرتیرودھ کا وکلپ ہی وہ مارک ہے جو شترو کو اس کے اتیاچاروں سے روکنے میں سکشم ہے۔ جہاد اسلامی نے گروار کو ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اویز اور نشاسن کے ادھیکاریوں کے ساتھ فلسطین کی سوشاست سرکار کی بیٹھکیں فلسطینی راشٹر کے لیے لابھدائک سدھ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ملاقاتیں فلسطینیوں کے ورودھ زائنی اتیاچاروں کو بڑھانے میں پردے کا کام کریں گی۔ جہاد اسلامی کے پروکتا طارق سلیمی نے فلسطینیوں دوارا کی جانے والی پرتیرودھک کارروائی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ یہی پرتیرودھ زائنی شترو کو پیچھے ہٹنے پر بھی وش کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اویز زائنی شاسن کے ورودھ سب سے پربھاوشالی ہتھیار پرتیرودھ ہے۔
موریتانیا کی سرکار نے اس خبر کا کھنڈن کیا ہے کہ اس نے کوٹنیتک سمبندھ بنانے کے لیے زائونی شاسن کے ساتھ سمپرک کیا ہے۔ فارس نیوز کے انوسار موریتانیا کے سانسکرتک منتری نے زائونی سنچار مادھیموں میں آنے والی اس خبر کا کھنڈن کیا کہ اس نے زائونی شاسن کے ساتھ کوٹنیتک سمبندھ بنانے کے لیے کچھ عرب دیشوں سے سمپرک کیا ہے۔ زائونی سنچار مادھیموں نے بدھوار کو اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ موریتانیا کے کوٹنیتک سمبندھ بنانے کے لیے زائونی شاسن کے ساتھ سمپرک کیا۔ گیات رہے کہ سن 1999 میں موریتانیا نے زائونی شاسن کے ساتھ اپنے کوٹنیتک سمبندھ استھاپت کر لیے تھے۔ بعد میں سن 2009 میں اس اویدھ شاسن کی اور سے غزہ کے ورودھ کی گئی سینی کارروائی کا ورودھ کرتے ہوئے موریتانیا کے پورو راشٹرپتی محمد ولد عبدالعزیز نے زائونی شاسن سے اپنے سمبندھ توڑ کر زائونی شاسن کے راجدوت کو نشکاست کر دیا تھا۔
کشمیر کی حریت کانفرنس کے ورشٹھ نیتا سید علی شاہ گیلانی کا 92 ورش کی آیو میں نِدھن ہو گیا۔ حریت کانفرنس کے پورو پروکتا شیخ عبد المتی نے سید علی شاہ گیلانی کے ندھن کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی سوتنترتا کے آندولن کے سنستھاپک اب ہم میں نہیں رہے۔ سوتروں کا کہنا ہے کہ بھارتیہ سینا اور کشمیر پرشاسن نے پچھلے 12 سال سے سری نگر میں گھر میں انہیں نظر بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سواستھ میں بہت گراوٹ آ گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
شدو، آپ کا سواگت ہے کارکرم راجنیتک چرچا میں۔ میں ہوں احمد عباس۔ راجنیتک چرچا میں آج ہم بات کریں گے فلسطین میں زائنیوں کے حملے میں ایک فلسطینی کی شہادت کی۔
تارکن خلفہ اربع۔
کارکرم راجنیتک چرچا میں ہم افغانستان کے پنشیر علاقے کے تازہ حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ بھارت کے اتر پردیش راجیہ میں ودھان سبھا چناؤ نزدیک آ گئے ہیں، تو راجنیتک گتویدھیاں بھی تیز ہونے لگی ہیں۔
یہ یاترا جن جن ضلعوں سے ہو کر کے آئی ہے، وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کا صفایا ہو جائے گا۔ بھارتی جنتا پارٹی ڈھونڈے گی کہ ان کے پرتیاشی کہاں ہیں۔
یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں فلسطین سے۔ زائنی سینکوں کے حملے میں ایک فلسطینی یوا شہید ہو گیا۔ زائنیوں نے اس فلسطینی یوا کی بڑی نرممتا سے ہتیا کی اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ایک فلسطینی مزدور تھا جو کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس فلسطینی یوا کی شہادت پر لوگوں میں گہرا آکروش ہے، اور اسرائیل کے خلاف پردرشنوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ فلسطین سے خالد سبرنا کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں روش زیدی۔
تارکن خلفہ اربع۔
39 ورشیہ یوسف جب پشمی رام اللہ میں استھت بیت اور نامک قصبے میں اپنے گھر کی اور لوٹ رہے تھے، تبھی اسرائیل کے آتنکی سینکوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ زیونی سینکوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شہید یوسف نے ان پر گولیاں چلائی تھیں، لیکن جانچ میں پتا چلا کہ وہ دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد اپنے گھر کی اور لوٹ رہے تھے۔ شہید کی پتنی کا کہنا ہے کہ ان کے پتی گولی لگنے کے بعد اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹ رہے تھے تاکہ وہ گھر تک پہنچ سکے، لیکن ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ شہید کی پھوپھی کا کہنا ہے کہ وہ صبح سے کام پر چلا جاتا تھا تاکہ اپنے پریوار والوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ اس کے 4 بچے ہیں، ایک کا ابھی حال ہی میں جنم ہوا ہے، ایک 8 سال کا بیٹا ہے اور ایک 12 سال کی بیٹی اور ایک 13 ورش کا بیٹا۔ آخر اس کی کیا غلطی تھی؟
مئات الفلسطینیین من بلدته شیعوا الشہید یوسف۔
سینکڑوں کی سنکھیا میں فلسطینیوں نے 39 ورشیہ شہید یوسف جاد اللہ کی شو یاترا نکالی، جسے اداوا مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر تک لے گئے۔ یہ دکھد گھٹنا اسرائیل کے یدھ منتری کے ساتھ فلسطینی پرشاسن کے پرمکھ محمود عباس سے ملاقات کے 2 دن بعد گھٹی ہے۔ اس ملاقات کا ادیش جنون شاسن کا اس پرشاسن کو سمرتھن دینا اور پرتیرودھ کا دمن ہے۔ ایک فلسطینی کارکرتا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے آتنکی سینک اپنے شوق کے لیے فلسطینیوں کی ہتیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر ان کی ہتیا کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ان سے جواب مانگے گا؟ کیا کوئی ان کے اپرادھوں کے لیے ان کو سزا دے گا؟ اوید زینی شاسن کے چیک پوسٹ اب تک سینکڑوں فلسطینیوں کی جان لے چکے ہیں۔ یوسف جاد اللہ زندگی کی تلاش کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آتنکی اسرائیلی سینکوں کی گولیوں نے اس وقت انہیں شہید کر دیا جب وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہے تھے۔ فلسطین سے آئی آر آئی بی کے لیے خالد سبرنا کی رپورٹ۔
افغانستان کے علاقے پنجشیر کے حالات کچھ الگ ہیں۔ اس علاقے کا طالبان نے گھیراؤ کر لیا ہے، لیکن اب تک اس پر طالبان کا نینترن نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی کوئی بات چیت کسی نتیجے تک پہنچ سکی ہے۔ کابل سے بہنام یزدانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ساتھی اختر عباس۔
طالبان اور پنجشیر میں ان کی ویرودھیوں کے بیچ وارتا کا ابھی تک کوئی پریڑام نہیں نکلا۔ طالبان نے پنجشیر پرانت کا گھیراؤ کر لیا ہے اور یہی پرانت ہی کیول ان کے نینترن میں نہیں ہے۔ پچھلے دو دنوں کے درمیان بھیشن جھڑپوں میں تیزی آئی ہے۔ طالبان کے اسلامی نیمنترن آیوگ کے پرمکھ نے پنجشیر کی جنتا کو سندیش دیتے ہوئے کہا،
برادران عزیز، آل کی مذاکرات،
میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وارتا کوئی پریڑام نہیں نکلا اور طالبان نے پنجشیر کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے۔ پنجشیر میں موجود ویرودھیوں سے طالبان کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ پچھلے ہی دنوں امریکی سینک 20 سال کے قبضے کے بعد افغانستان سے نکل کے چلے گئے۔
امریکہ
ہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ ایک انے افغان ناگرک کا کہنا ہے کہ امریکہ تو چلا گیا، اگر وہ نہ آتا تو آج افغانستان کا یہ حال نہ ہوتا۔
امریکہ کا رجا مرک۔
ایک انے افغان ناگرک کا کہنا ہے کہ امریکہ جیسے آیا ویسے ہی وہ چلا گیا، نہ ہی اس نے کچھ یہاں بنایا اور نہ ہی دیش کی پرگتی میں حصے دار بنا۔ آخری امریکی سینکوں کا گٹ افغانستان کے کابل ایئرپورٹ سے ایسی حالت میں نکلا کہ اس نے اس ایئرپورٹ کے آدھار بھوت ڈھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور پچھلے 2 سپتاہ کے دوران بہت سی تکنیکی چیزوں کو تباہ کر دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اڑانوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطر سے ٹیکنیشینز کی ایک ٹیم کابل پہنچی ہے۔ طالبان نے نئی سرکار کے گٹھن اور اس کے سپریم لیڈر کا اعلان کر دیا ہے، لیکن سرکار کے بارے میں اور بھی بیورا آنے کی پرتیکشا ہے۔ بہنام یزدانی، IRIB نیوز، کابل۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت کے اتر پردیش راجیہ میں، جو کہ اس دیش کا سب سے بڑا راجیہ ہے، ودھان سبھا چناؤ نزدیک آ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے راجنیتک دلوں کی گتیویدھیاں بھی تیز ہونے لگی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ 300 سے ادھک سیٹیں جیتے گی، جبکہ سماجوادی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس بار کے چناؤ میں 400 سے زیادہ سیٹیں اپنی جھولی میں ڈالنے میں کامیاب ہوگی۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواددتا شمشاد
کاظمی۔ اگلے ورش اتر پردیش ودھان سبھا چناؤ کے لیے جہاں سبھی راجنیتک دل اپنی اپنی تیاریوں میں جٹے ہیں، وہیں راجیہ کی ستاداری بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی اپنی تیاریاں آرمبھ کر دی ہیں۔ اتر پردیش کے اپ مکھیہ منتری کیشو پرساد موریہ نے دعویٰ کیا کہ 2022 کے ودھان سبھا کا چناوی پرینام بھی بھاجپا کے پکش میں ہوگا اور یہ پرینام ہی ورش 2024 کے لوک سبھا چناؤ میں بھاجپا کی جیت کا مارگ پرشست کرے گا، کیونکہ ان کے انوسار دلی کا راستہ اتر پردیش سے ہو کر جاتا ہے۔ اپ مکھیہ منتری نے جہاں یہ کہا کہ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वहीं ये भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ को पहले से ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। यद्यपि योगी सरकार की नीतियों और काम करने के तरीकों को लेकर निरंतर सवाल उठते रहे हैं और कोरोना प्रबंधन को लेकर भाजपा में आंतरिक मतभेद भी सामने आ चुका है, लेकिन मौर्य का कहना है कि भाजपा की टीम 2017 की तुलना में ज्यादा समर्थ है। मौर्य ने दावा किया कि भाजपा 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी और 2022 और 2024 के चुनाव एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने हमें 2014, 2017 और 2019 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह 2022 में भी किसी विरोधी दल के बहकावे में आए बिना फैसला सुनाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा का लक्ष्य सबके लिए विकास का है। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े नेता का मार्गदर्शन हमारे पास है, जबकि दूसरे दलों में इसका अभाव है। उधर अगले साल के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के किसी बड़े गठबंधन की संभावना नहीं है और समझा जाता है कि तीनों बड़े दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने ही बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।
ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहाँ हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम सफल महिलाएं, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम आज की बात।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, प्रोग्राम सफल महिलाएं की कनकड़ी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस प्रोग्राम में हम विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ने वाली ईरानी महिलाओं से आपका परिचय करवा रहे हैं, जो हमारे ही बीच से हैं और किसी दूसरी दुनिया से नहीं आई हैं।
एक सफल ईरानी लेखक व फिल्म निर्देशक नरगिस आबियार की फिल्म ने फ्रेंच कैरसन राजनीतिक फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकार और छात्र फिल्म जूरी समेत तीन प्रमुख पुरस्कार जीते। शबी की मां कामिल शोध फिल्म की निर्देशक नरगिस आबियार ने पुरस्कार लेने के बाद कहा, यह दर्शकों की नजर से बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार है और मैं इस पुरस्कार को ईरानी जनता को समर्पित करती हूं।
शबी के माह कामिल शुद वर्तमान में एक हिंसक रोमांस की कहानी का वर्णन करती है। ये फिल्म फायजा मंसूरी से अब्दुल हमीद रेगी की शादी की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो शादी के बाद पाकिस्तान भागकर चला जाता है और किसी वजह से अब्दुल मालिक फायजा के भाई की हत्या कर देता है। फिल्मकार ने इस फिल्म में एक विवादास्पद मुद्दा उठाया है, इसी वजह से इस फिल्म पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म बनाना साहस का काम और सराहनीय है। फिल्मकार ने साहस के साथ हालिया वर्षों में घटने वाली घटनाओं को पर्दे पर पेश किया है।
मशहूर क्रिटिक दबूरा यांग ने हॉलीवुड रिपोर्ट में इस फिल्म का टिप्पणी करते हुए लिखा है, शबी के माँ कामिल शोध एक ड्रामेटिक फिल्म है। एक युवा और शांत ईरानी दुल्हन को जब पता चलता है कि उसके पति का परिवार अलकायदा का सदस्य है तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है। नरगिस आबियार द्वारा पेश किया गया ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ड्रामा एक प्रेम कहानी लेकिन इसी के साथ डरावनी भी है।
नरगिस आबियार शबी के माह कामिल शोध में अपनी प्रतिभा व योग्यता को भरपूर तरीके से पेश करती हैं। उन्होंने ईरान इराक युद्ध से संबंधित मानवीय मुद्दों पर आधारित अपनी दो फिल्मों शियार सदो चेलो से और नफस के बाद अलकायदा का मुद्दा उठाया और किसी ओपेरा की तरह यह हमें हर क्षण डर और भय में डुबो देता है। कड़वे एंड के बावजूद यह फिल्म एक बहुत ही रंगीन और संगीतमय कार्य है जो पूरे समय दर्शकों को खुद से बांध कर रखती है। ईरान और पाकिस्तान के बाजारों से लेकर रेगिस्तान और पहाड़ों के भ्रामक दृश्यों तक।
नरगिस आबियार का जन्म तेहरान में हुआ था। उन्होंने कहानी के क्षेत्र में फारसी और अंग्रेजी में 29 किताबें लिखी हैं। वह ईरानी सिनेमा की एक सफल लेखिका हैं। उन्होंने ईरानी फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता मोहम्मद हुसैन कासिमी से शादी की है। उन्हें ईरानी सिनेमा की सबसे सफल महिलाओं में से माना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों शियार 143, नफस और शबी के माह कामिल शोध के लिए ढेर सारे ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। शबी के माह कामिल शोध ने बेहतरीन निर्देशन समेत 7 सीमुर्ग ब्लोरिन पुरस्कार और 37वें फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार जीता है।
उन्हें ईरानी सिनेमा की उन गिनी चुनी महिलाओं में गिना जाता है जिन्हें स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग की समझ है और उसकी ABC से अवगत हैं। आबियार ने अपने बचपन का एक हिस्सा युद्ध के दौरान गुजारा था। उन्होंने बमबारी वाली रातें और इर्द गिर्द के लोगों की आंखों में इंतजार की घड़ियां देखी हैं। वो कहती हैं, अचानक ही मेरा रुझान रोमांस और साहित्य से युद्ध की ओर हो गया और मैंने इसे अधिक ड्रामेटिक पाया, इसलिए कि किसी राष्ट्र का इतिहास एक कलाकार की नज़र से होकर एक कला में बदल जाता है।
आबियार फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय विचार और समझ के निकट आने विशेष रूप से महिलाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक मानती है और उनका मानना है कि फारस खाड़ी के देशों में ईरान में महिलाओं को सबसे ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की आजादी है। यहां तक कि कुछ पश्चिमी देशों की तुलना में भी ऐसी गतिविधियों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता हासिल है।
उन्होंने साबित कर दिया है कि क्रांति के बाद कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे तक ईरानी महिला कलाकारों ने योगदान दिया है और इस भूमि की 7वीं कला में महिलाएं उस बिंदु पर पहुंच गई हैं जहां इस्लामिक क्रांति से पहले की तरह फारसी फिल्मों की अधिक मार्केटिंग के लिए कैमरे के सामने आने के बजाय एक निर्देशक, निर्माता या स्क्रिप्ट राइटर के रूप में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं। दूसरे शब्दों में भले ही ईरानी महिलाएं पर्दे पर भूमिका निभाएं और कैमरे के सामने अभिनय करें, लेकिन ईरानी महिला के स्थान और स्थिति को सुरक्षित रखती हैं और एक कलाकार के रूप में सामने आती हैं, न कि कठपुतली के रूप में, और निर्देशक और निर्माता के आर्थिक लाभ को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में।
नरगिस आबियार के अनुसार अन्य देशों की तरह ही ईरान में महिलाओं को पुरुषों की तरह अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि दूसरों का विश्वास जीत सके। ईरानी सिनेमा में महिलाएं ऐसा कर चुकी हैं। आबियार खुद भी उसका एक उदाहरण है। ईरानी सिनेमा में किसी निर्देशक की सफलता का पैमाना सीमुर्ग पुरस्कार जीतना है और उनकी फिल्म में बिना किसी विवाद के फज्र फिल्म पुरस्कार जीता है।
ईरान में महिला निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं का उदय और फीचर व डॉक्यूमेंट फिल्मों में 50 महिला निर्देशकों की उपस्थिति ईरानी सिनेमा में महिलाओं की अहम भूमिका का प्रमाण है। इन 50 महिला निर्देशकों में से लगभग 20 पेशेवर महिला निर्देशक हैं जो लगातार फिल्म निर्माण कर रही हैं और मशहूर हैं। ईरानी सिनेमा में महिलाओं की स्वीकार्य उल्लेखनीय तादाद के अलावा विशेष रूप से निर्देशन, निर्माण और पटकथा लेखन में भी इस उपस्थिति की गुणवत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सफल फिल्म शबी के माह कामिल शुद्ध को देखकर यह माना जा सकता है कि भले ही क्रांति के बाद सिनेमा ने देश में कला के क्षेत्र में सिर्फ नरगिस आबियार को पेश किया हो, तब भी महिलाओं की उपस्थिति में उसका एक शानदार रिकॉर्ड माना जाएगा।
वास्तविकता यह है कि ईरान में महिला कलाकार किसी भी तरह के लिंग भेदभाव के बिना अपनी गतिविधियां अंजाम दे रही हैं। सीमाओं के उस पार जहां सिनेमा का जुड़ाव लिबरल दुनिया से है, वहां महिला कलाकारों और फिल्मकारों को बहुत सी समस्याएं पेश आती हैं। हॉलीवुड की सबसे सफल महिलाओं में से एक मेरिल स्ट्रीप का कहना है, फिल्मों के निर्माण और वितरण में महिलाओं की भूमिका और इस प्रक्रिया में उनकी आर्थिक भागीदारी हमेशा से ही दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पुरुषों ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है।
ईरान और विश्व सिनेमा में महिलाओं की स्थिति की तुलना से ही इसके अंतर का पता चल जाएगा कि ईरानी सिनेमा में महिलाओं के साथ नैतिकता के आधार पर तथा पेशेवराना व्यवहार किया जाता है। नरगिस आबियार समाज में महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका का एक उदाहरण है। उनकी रचनाएं विषय के चयन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन विषय से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास और भरोसा है, जिसके कारण उन्होंने सुंदर ईरानी महिला की तस्वीर पेश की है। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज की बात में हम जायजा लेंगे भारत की अफगानिस्तान रणनीति का। अफगानिस्तान में हालिया हफ्तों में बहुत गहरे राजनीतिक और सुरक्षा परिवर्तन دیکھنے کو ملے جس کے افغانستان کی سیما کے بھیتر ہی نہیں بلکہ کھیتریے اور انتراشٹریہ استر پر گہرے پربھاؤ ہیں۔ ان پریورتنوں کا بھارت کے افغانستان رڑنیتی پر بھی اثر ہوا ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا ہمیں پہلے سے انومان تھا، بس اتنا سا فرق ہوا کہ یہ سب کچھ بہت جلد ہو گیا۔
جنرل اتلو ہیز آلریڈی براٹ آؤٹ واٹ دی ایشوز آر ان افغانستان۔ آل دیٹ آئی وڈ سے از ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ واز سم تھنگ دیٹ ہیڈ بین اینٹیسیپیٹڈ، اونلی دی ٹائم لائنز ہیو چینجڈ۔ سو فرام دی انڈین پرسپیکٹو وی ور اینٹیسیپیٹنگ اے طالبان ٹیک اوور آف افغانستان۔ وی ور کنسرنڈ اباؤٹ ہاؤ دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی فرام افغانستان could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that.
اس مدعے پر بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے گمبھیر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ستا کے سمیکرنوں میں آیا بدلاو بھارت کے لیے ایک پرمکھ چنوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنی سرکشا رڑنیتی پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بدلتے سمیکرن ہمارے لیے چنوتی ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنی رڑنیتی پر پھر سے سوچنے کے لیے विवश होना पड़ा है। हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं और क्वाड का अस्तित्व में आना इस रणनीति का हिस्सा है। भारत को पाकिस्तान के साथ तालिबान के खास तरह के रिश्ते को लेकर गंभीर रिजर्वेशंस हैं। हालिया दिनों तालिबान के प्रवक्ता और सांस्कृतिक मामलों के प्रभारी जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान दूसरा घर है और अपने घर के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। مجاہد نے بھارت اور پاکستان کے بیچ لمبے سمے سے جاری وواد پر بھی بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر یہ معاملہ سلجھا لینا چاہیے۔ مجاہد نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر اپنے پرانے سبھی معاملوں کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ دونوں دیشوں کو ایک دوسرے کے پڑوس میں ہی رہنا ہے اور دونوں کے ہت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھارت پرشاست کشمیر کے مدعے پر مجاہد نے کہا کہ بھارت سرکار کو ویوادت علاقے کو لے کر سکاراتمک رخ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا بیان بھارت کے درشٹی کون سے کافی چنتا جنک ہے۔ طالبان پروکتا سہیل شاہین نے بھارت کے بارے میں اپنی نیتی پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بھارت کے جو پروجیکٹ ہیں انہیں وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ افغانستان کی دھرتی کو سامرک لکشوں کے لیے یا اپنے ویرودھیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہے گا تو اسے اس کی انومتی نہیں دی جائے گی۔
ہم نے کہا کس ملک کو، کس گروہ کو، کس پر کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کس کے خلاف استعمال کرے، یہ ایک بات، یہ کلیئر ہے۔ دوسرا یہ وہ چاہے کہ ادھر انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں، ادھر بہت ریکنسٹرکشن پروجیکٹ ہے، انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکے ہیں، لیکن اگر دوسرے کے افغانستان کے سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ملٹری مقاصد کے لیے، اپنی رائیولریز کے لیے استعمال کرے، وہ تو ہماری پالیسی کس کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس کے پروجیکٹ ہے افغانستان میں، انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے، وہ جیسا ڈیم ہے یا روڈ ہے، تو وہ کمپلیٹ کرے، لیکن وہ دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ ہم کس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے، وہ ہماری کلیئر کٹ پالیسی ہے۔
وہیں دوسری اور طالبان نیتریتو کے ایک سدسیہ نے قطر میں کہا کہ بھارت اس اپ مہادویپ کے لیے بے حد مہتوپورن ہے اور ان کا سموہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کے سانسکرتک، آرتھک، راجنیتک، ویاپارک سمبندھ اتیت کی طرح بنے رہیں۔ ان بیانوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ طالبان بھارت کو ملا جلا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ वैसे एक महत्वपूर्ण बदलाव और भी देखने में आया है। ये बदलाव सुरक्षा परिषद के बयान में दिखाई दिया। अगस्त महीने में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, अतः बयान पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। हुआ यह कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बयान के बाद ये माना जाने लगा है कि इस संगठन को लेकर अब गंभीरता बरती जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा परिषद ने अपने एक पुराने बयान में तब्दीली करते हुए एक पैराग्राफ में संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किए गए तालिबान शब्द को हटा दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने तो यूएनएससी के दोनों बयानों के स्क्रीनशॉट शेयर किए और टी शब्द के गायब होने की बात कही। दरअसल तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के एक दिन बाद 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की पुष्टि की है और ये भी माना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और यहां तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास थी और उसने ही इस बयान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तालिबान अब काफी समय तक अलग थलग नहीं पड़ने वाले हैं। तालिबान को संदर्भ के तौर पर हटाना दिखाता है कि भारत समेत यूएनएससी के सदस्य तालिबान को एक स्टेट एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। इससे पहले भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की रणनीति के बारे में राजनीतिक दलों को बताया।
We've just had a very good session for what, three and a half hours. 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke. And Pralaji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually. And the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan.
मगर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सरकार की ओर से नहीं दिए गए। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके विवेक काटजू तालिबान के संबंध में भारत सरकार की रणनीति की खामियां गिनवाते हैं और तालिबान से कोई संपर्क न साधने के फैसले पर सवाल उठाते हैं।
I have been extremely concerned at the lack of initiative on our part. A lack of being proactive. I say that we were a bystander because we really don't have the capacity to influence events on the ground. And diplomatically too, many countries were pointing out to us, countries with whom we had a commonality of interests in Afghanistan some decades ago, that because we had refused to have any open contacts with the Taliban, we were not in a position to really play the diplomatic game. Now, if you can't influence events on the ground and you can't be an active participant in the diplomatic game where it matters, then necessarily you become a bystander. And when I say you didn't know which way to turn, the way to turn was to say that we don't like the Taliban, we don't endorse what they stand for, in fact we condemn many of their practices, but our strategic interests demand that like other countries, like the Russians, like the Iranians, like the Chinese, like the United States, like Western Europe, even while we condemn their practices, we will do business with them and do business with them openly.
काटजू का कहना है कि भारत के नीति निर्धारक बहुत समझदार होने के बावजूद अफगानिस्तान के बारे में जो नीतियां अपना रहे हैं वो समझ से परे हैं।
I have great respect for the managers of Pakistan, Afghanistan, our entire diplomacy and security policies. I think they are people of wisdom, they are very astute. But for some odd reason, I have not been able to appreciate the kind of course they've adopted on Afghanistan, especially. I think they allowed themselves, for some reason I've never been able to understand, that maybe a good reason, to stand apart from what the rest of the major countries were doing. And we are a major power. And you pay a price when you stand apart.
बहरहाल भारत की अफगानिस्तान रणनीति क्या होती है ये आने वाले समय में और भी स्पष्ट हो जाएगा। भारत की वर्तमान रणनीति के बारे में कहा जा रहा है कि वो देखो और इंतजार करो की राह पर चल रहा है। अफगानिस्तान के परिवर्तनों से निश्चित रूप से भारत की पिछली रणनीति और नीतियों को एक धचका लगा है। देखना यह है कि बदलते हालात के साथ भारत की नई रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। और श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की, क्षमा कीजिएगा, ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना आज की बात। कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में अपने विचार आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। इसी के साथ हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज। Thank you.
ہے۔